أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں برکت دے، اور جس شوق اور محبت سے آپ بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے اس کا بہترین فائدہ اٹھائے. آئیے شروع کریں گے. آج ہم کریں گے سورۃ نمل کی آیت نمبر 18 سے 19 میں 12. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دورہ قرآن 2017 کے ڈے 22 یعنی 22 دن کا آغاز کریں گے. آج ہم سورۃ نمل کی آیت نمبر 18 سے کنٹینیو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. ایک مرتبہ جبکہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہے تھے، کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیو اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انمت علی وعلی والدی. اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آ جائے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر. پیچھے بات ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انیوژل چیزیں دی تھیں. یہاں اس کی ایک عملی تصویر دکھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جانوروں میں بھی حس ہوتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ان باتوں کو سن سکتے تھے، سمجھ سکتے تھے. آج میں آپ تو نہیں سن سکی، نہیں سمجھ سکتے، لیکن کم از کم ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے اپنے گھر میں پھرتی چلتی چونٹیوں سے بھی، خاص طور پہ جب ہم دوسروں کی غیبتیں کریں. پتہ چلا وہ چونٹی جا کے دوسرے کو کاٹ رہی، کر یہ جاؤ وہ تمہاری باتیں کر رہی ہے. لیکن یہ کیسی بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ دیکھیے پیچھے ہم نے نخل کی بات کی تھی، تو چونٹی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے. کیا ہے چونٹی کی خوبی؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو اینڈ پہ اناؤنس کریں گے ایک دو چار دن میں. رمضان کے بعد ایک آن لائن چھوٹا سا کورس 2-3 دن کا آفر ہو رہا ہے، بی پروڈکٹیو، کہ پروڈکٹیو بنو، نفع حاصل کرو، نفع دو. تو اس میں انشاءاللہ ہم ایک پورا دن چونٹیوں پہ بات کریں گے، ایک دن مکھیوں پہ بھی باتیں کریں گے. تو آپ میں سے جو بھی فائدہ اٹھانا چاہے گا کر لے گا. لیکن چونٹی پہ غور و فکر نے واقعی انسان کو اللہ کے آگے جھکا دیا. چونٹی کیا ہے؟ نمبر ایک، چونٹیاں اکیلے زندہ نہیں رہ سکتی، ٹیم ورک کرتی ہیں، اپنے اگلے پروں کو بجا کر باتیں کرتی ہیں، और एक आम चींटी 3 से 4 जुबानें जानती है, आप कितनी जानते हैं? जरा सोचिए, छोटी सी चींटी है। चींटियां दो किस्म की होती हैं, यानी अगर आप देखें तो चींटी की दो मेन कैटेगरीज हैं, एक है क्वीन यानी मलका चींटी और दूसरी है स्लेव्स, गुलाम होती हैं। इंस्ट्रक्शंस और हुक्म क्वीन देती है और काम सारी बेचारी गुलाम चींटियां करती हैं। अपने दुश्मन से इतनी अलर्ट होती हैं कि जरा कहीं कोई दुश्मनी का खतरा हो तो ना सिर्फ ये कि खुद वहां से निकल जाती हैं बल्कि अपनी दूसरी चींटियों को भी खबर देती हैं, फिर मिलके खाती हैं। कहीं एक चीनी का दाना डाल के देखिए, सिर्फ एक चींटी वहां आएगी, खाएगी नहीं, वापस जाएगी, और थोड़ी बहुत चींटियों की एक पूरी फौज लेकर साथ आती है और आपको मुझे बेबस कर देती है। इसको किसने बताया? जंगजू होती है अपनी जात से, और इसमें भी मेल चींटे का काम बस वही है, मेटिंग के बाद मर जाता है। क्या कहते हैं कि है वजूद जन से कायनात का हुसन। तो आप देखिए कि ये मेरे आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से छोटी छोटी चीजों से अल्लाह ये काम लेता है। यहाँ अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह तो छोटी छोटी चींटियों से ये काम लेता है तो मुझसे भी ले ले। और आप कहते हैं ये पूरे घर बना के रहती हैं, कभी इनके घरों की फॉर्मेशन देखें अकल दंग रह जाती है, क्या आप और मैं अपने घरों की हिफाजत करते हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये चींटियाँ अल्लाह का हुक्म मानती हैं। पीछे नाहल की भी कामयाबी की वजह क्या थी कि वो अपनी मर्जी नहीं करती, वो अल्लाह के हुक्म को मानती है। और यहाँ भी यही चीज़ है कि इधर भी कायनात की जो भी कोई बड़ी चीज़ देखें उसमें अपने लिए ये दुआ किया करें कि अल्लाह ये मखलूक जिंदा है, जानदार है, चाहे इंसान है या गैर इंसान है, मुझे इससे नसीहत लेने वाला और अपना मुहासबा करने वाला बना। फिर दूसरी बात है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कितनी प्यारी है, रब्बे औज़ेनी, अल्लाह मुझे कंट्रोल में रख। क्यों? जब बंदे को कोई नेमत मिलती है ना तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। इससे क्या पता चलता है कि जब अल्लाह ताला इल्म दे, नेमत दे, कोई भी दुनिया की दौलत दे, तो काबू में रहना चाहिए। और साथ ही साथ देखिए कि फिर अपने माँ बाप को भी याद रखे इंसान और अल्लाह की रहमत को हासिल करता रहे। यहाँ से आप देखिए कि उस दौर में कैसे कैसे खूबसूरत काम होते थे और कोई गर्रा नहीं, कोई किसी के ऊपर फख्र नहीं करता। तो इससे पता क्या चलता है कि लीडर के अंदर अगर स्किल्स होती हैं तो वो बातों से ज़्यादा काम पर तवज्जो देता है। अभी चींटियों की बात समझ आई, एक और वाकया आपके मेरे सामने जिसे पता चलेगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ चींटियों को नहीं बल्कि परिंदों के ऊपर भी उनकी हुकूमत थी। आइए देखते हैं। फरमाया, और एक मौके पर सुलेमान ने परिंदों का जायजा लिया और कहा, क्या बात है कि मैं फलां हुदहुद को नहीं देख रहा? क्या वो कहीं गायब हो गया है? मैं इसे सख्त सजा दूंगा या इसे ज़िबाह कर दूंगा, वरना इसे मेरे सामने माकूल वजह पेश करनी होगी। कितना गुस्सा है सुलेमान को किसी के ना आने पर। हम ये जुमले बोलें तो अगले दिन आधे ही लोग ना आए। इससे पता चलता है कि जो किसी को भी फायदा कोई दे तो उसको ये हक पहुंचता है कि वो पूछ सके कि आप बगैर वजह के क्यों गए और क्या हुआ। कुछ ज्यादा देर ना गुजरी थी कि इसने आकर कहा, अब देखिए कि आपको क्या करना है, जो कि खुद खुद कर रहा है। कैसे? मैंने वो मालूमात हासिल किए जो आपके इल्म में नहीं, यानी अपने ना आने की वजह बतानी है और रीजन भी ऐसी हो कि जो चल सके, जो एक्सेप्टेबल हो। खैर, मैं सबा के मुतल्लिक यकीनी इत्तला लेकर आया हूँ। मैंने वहाँ एक औरत देखी जो इस कौम की हुक्मरान है, इसको वहाँ हर तरह का सरो सामान बख्शा गया है और इसका तख्त बड़ा अजीमुशान है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज के आगे सजदा करती है। नोट कीजिएगा, परिंदे को दूसरों को शिर्क करते देखकर हैरत हुई। आज पता नहीं परिंदों का और चींटियों का और दूसरी मखलूकात का क्या रिस्पॉन्स और रद्दअमल होता होगा हम लोगों को भी शिरकिया काम करते देखकर। और इससे क्या पता चलता है कि परिंदे और जानवर ये सारे जो हैं ये अल्लाह के हुक्म से चलते हैं, तौहीद पे होते हैं, शिरक नहीं करते। पीछे आपने पढ़ा कि कुछ लोग जानवरों से भी बदतर हैं, तो उसमें भी जिक्र हुआ था कि जानवर शिरक नहीं करते। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इन जानवरों की तरह हमें भी इसकी समझ दे। फिर दूसरी बात, अब देखिए कि हज़रत सुलेमान की इन सारी चीज़ों को पढ़ते हुए एहसास हो रहा है कि दीन का इल्म भी और दुनिया का इल्म भी, कामयाब कॉम्बिनेशन क्या है कि सेकुलर नॉलेज और सेक्रेट नॉलेज जमा हो जाए, इल्म दुनिया और इल्म आखिरत जमा हो जाए, यही बेस्ट दुनिया के लिए कॉम्बिनेशन होगा। हमने दो मुख्तलिफ हिस्सों में दीन को जोड़कर कुछ को मजहबी इदारों में दाखिल कर दिया और कुछ को गैर मजहबी, तो छोड़ दीजिए ऐसे इदारे जहाँ अल्लाह की भी पहचान ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारी नस्लों को दोनों उलूम में आगे करे। फिर फरमाए, शैतान ने उनके अमाल इनके लिए खुशनुमा बना दिए और इन्हें शाहराह से रोक लिया, इस वजह से वो सीधा रास्ता नहीं पाते। बड़ा अहम जुमला ये भी, यानी अभी तक मलका को जो ईमान नहीं मिला उसकी वजह शैतान है। और हकीकत यह है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आज भी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन शैतान ने उनको बाहर रोका हुआ है और अभी हम जैसा कोई नहीं पहुंचा। मलका अकलमंद थी मगर इल्म नहीं था। आज भी कितने लोग हैं कि जिनके अंदर समझ है, अकल है, लेकिन अभी तक उनके पास हिदायत का कोई चिराग नहीं पहुंचा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे आपको दूसरों तक दीन को लेकर जाने वाला बनाए। वो कहते हैं ना कि वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी है। जब तक पूरी दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम नहीं नुमाया हो जाता, ये कलमा नहीं नुमाया होता या ये बड़ा नहीं होता, उस वक्त तक मुझे आपको फुर्सत की तो बिल्कुल कोई होश भी नहीं आनी चाहिए। छुट्टी तो बहुत बड़ी बात है, काम काम और काम। आराम कहाँ, नम का नाव मतिल रोज, कब्र में जाके सोएंगे। दुनिया में बस सहलाया करें अपने आप को, थोड़ा सोए थोड़ा काम, थोड़ा सोए थोड़ा सोए। लेकिन जो गफलत की नींद पे उम्मत 200-400 साल से सोई हुई है, उसकी वजह कि आज दुनिया में हर चौथे दिन कोई ना कोई फितना नजर आता है। अल्लाह ताला हमें अपने हिस्से का काम करने वाला बना दे। फरमाया, अल्लाह यस्जुदु लिल्लाहि अल्लज़ी युख्रिजु अल-खब्बा फिस-समावाति वल-अर्ध, के इस खुदा को सजदा करें जो आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजें निकालता है और वो सब कुछ जानता है जिसे तुम लोग छुपाते और जाहिर करते हो। अल्लाह के जिसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, वो अर्श अजीम का मालिक है। सोचिए अल्लाह की बड़ाई, तो फिर मुझे भी उसी के आगे झुकना है। قال سننظر صدقت ام كنت من الكاذبين। अब फिर तरबियत का नुक्ता। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अभी हम देखे लेते हैं कि तूने सच कहा या तो झूठ बोलने वालों में से, यानी तेरा ये उजर जो पेश किया ये सच्चा है या झूठा है, एप्लीकेशन सच्ची है कि झूठी है। कहीं वही बात तो नहीं कि नानी फौत हो गई, कहा ये तो चौथी दफा फौत हुई है। तो आप याद रखिए कि कभी भी कोई उजर हो तो उससे पहले एक सेकंड के लिए इंसान खुद सोचे क्या ये मेरा उजर जेन्युइन है। किसी इंसान को मुतमईन करना बहुत आसान है। आप मुझे कुछ कह दें, मैं आपको कुछ कह दूं, मैं लेट आई, बाहर ब्रश था, मैं लेट आई, ये हो गया, आपने मुझे क्या कहना है? आप लेट आए मुझे कह दें, मैं कहूंगी कुछ नहीं। लेकिन याद रखिए, दूसरे मुतमईन होंगे लेकिन अल्लाह की नजर हमारे असल पे होती। चुप रहना बेहतर है झूठा उजर देने से। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अभी हम देख लेते हैं कि तूने सच कहा या तो झूठ बोलने वालों में से है। मेरा ये खत ले जाओ और इसे इन लोगों की तरफ डाल दे, फिर अलग हट कर देख कि वो क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं। यहाँ है बेस्ट कॉम्बिनेशन। हजरत सुलेमान अपने वक्त के बादशाह थे, जरा सी खबर मिली कि दूसरे मुल्क की एक मलका शिर्क करती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हर बंदा अपने लेवल के दर्जे पे दीन का मुकल्लफ है। एक बादशाह दूसरे बादशाह को दीन का पैगाम दे सकता है, मैं आप देंगे तो हमारा तो खत ही नहीं पहुंचेगा उस जगह तक। हजरत सुलेमान ने इसका सबूत दिया। आज तमाम मुसलमान लीडरों के लिए ये आयत एक हुज्जत है कि जहां तक उनका लेवल है, जहां तक उनकी अप्रोच है, वो दीन की दावत दे, नहीं देंगे तो बचेंगे नहीं। और याद रखिए, जब फिर ये नहीं देंगे तो दूसरे हुक्मरान तो फिर मुसलमानों को आके दावत देंगे ही। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों के लिए इस काम को आसान कर दे। मेरा ये खत ले जाओ और उसे उन लोगों की तरफ डाल दे, फिर अलग हट कर देख, ये भी बड़ी बात है, अलग हट के बैठ। तबलीग करके सर पे सवार नहीं हो जाना चाहिए, मानो जल्दी करो मैंने कह दिया फौरन करो, नहीं बस बात कीजिए और पीछे हट जाए फिर, क्योंकि बाद दफा इंसान दूसरे की मौजूदगी की वजह से वो काम नहीं करता। तो किसी को आपने दावा मटेरियल दिया, उसको प्यार से दे के अब हट जाइए, एक छोटा सा मैसेज छोड़ दें और दे दीजिए। बहुत सारे खूबसूरत छोटे छोटे दावा कार्ड्स मिलते हैं, यहाँ तो मुझे कोई इत्तेफाक नहीं हुआ देखने का। लंदन में हम लोग थे तो वहाँ एक ग्रुप है आयरा के नाम पे, मे भी आप उनकी वेबसाइट भी चेक करें। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत किस्म के छोटे छोटे ऐसे आए कार्ड्स में, जैसे बिजनेस कार्ड का साइज होता है ना, तो उस पर छोटे छोटे मैसेज है, जैसे मिसाल है कायनात पे गौर है, आंख बनी हुई है तो तख्लीक पे गौर है। वो मैसेज ऐसे नहीं है कि जिसको देखा कोई इस्लामिक या रिलीजियस मैसेज लगता है, जस्ट थॉट प्रोवोकिंग। तो वो कार्ड्स देते हैं, हमने वहां अपने क्लासेस में बहुत दफा रखे और दिए जाते हैं लोगों को। रह जाते किसी को, हेलो हाउ आर यू डूइंग, क्या हाल है, बस पे बैठे, ट्रेन पे बैठे, चलते हुए क्या, और इट्स माय कार्ड, अच्छा तुम्हें कोई बात चाहिए, मैं अपना कार्ड कह के दे दे, उसको क्या लगे आप कौन है, क्योंकि आप और मैं, मेरा आपका तारुफ तो कुरान है। क्या बड़ी बात है किसी को फायदा हो। कई दफा ऐसा हमने खुद किया, एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस भी हुआ था कि जाते हुए जैसे घूमने गए तो वहां बेंचेस पे रख दिए, तो जब हम कहीं बाहर आए तो एक आदमी निकल रहा था वहां से, तो मेरे हस्बैंड ने उससे थोड़ी सी बात करके उसे कहा, यू वॉन्ट माई कार्ड, यू कैन टॉक टू मी, तो देखे नो नो आई हैव दिस। हम एकदम हैरान हो गए कि इसके पास कहाँ से आ गया, कहते तो आई टुक इट फ्रॉम द बेंच, वायर था तो उसने रख उठा लिया। तो हमेशा कोशिश करें प्यार से, मोहब्बत से, तड़प के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। आपकी मेरी तड़प काफी है, अल्लाह ताला पैगाम में खुद बहुत बरकत डालेगा। अब देखिए, पैगाम मलका जो थी उसके सामने पहुंचता है, خط سنا. ملکہ بولی اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. ٹو دی پوائنٹ، کوئی ایکسٹرا میسج نہیں، کوئی فریکنس نہیں. دعویٰ اور تبلیغ کے نام پہ بھی عورت اور مرد کو اپنی لمٹس میں رکھنا چاہیے اپنے آپ کو. دوسری بات ایک ہے کہ اگر یہی بات ڈائریکٹ آ کر خود خود کرتا تو ملکہ اس کی بات نہ سمجھتی. کیا پتہ چلا کہ جہاں دعویٰ جس طرح سے پہنچانی ہے اسپیسیفک پرسن کے ذریعے بات کرائیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ بات بن گئی ہے، پتہ چلے کہ ہم نے ایسی عجیب غریب طریقے سے دعویٰ کی تبلیغ کی کہ اگلا بندہ اور بھی الٹا ہو گیا. تو یہاں دعویٰ ٹیکنیک میں ہمیں ملی. خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں. انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یعنی گویا کہ ملکہ سمجھدار تھی. آپ دیکھیں، مشورہ کر رہی ہے، اپنا فیصلہ نہیں ٹھونسا. ایک اچھا لیڈر ہمیشہ پہلے مشورہ لیتا ہے پھر دیتا ہے، اور جو مشورہ مانگے نا اپنے آپ کو ہر جگہ پیش کرتا رہے اور اس کو زبردستی منوانا بھی چاہے تو یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں کے کام میں پھر خیر نہیں ہوتی. دوسری بات دیکھیے کہ ملکہ نے یہ جو کہا کہ بادشاہ کسی ملک میں گھستے ہیں اسے خراب کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تجربہ کار عورت تھی. کہنے لگی، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں، میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے الچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں. یعنی ہر بات سے پتہ چلتا ہے کہ عورت عقل مند تھی. یاد رکھیے گا، یہاں آپ کے لیے میرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت میسج ہے کہ ملکہ کے پاس پیغام لے کر ہدہد گیا. پیچھے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے، آگے پھر پڑھیں گے، فرعون کے پاس پیغام کون لے کر گیا؟ بذات خود بچشم خود موسیٰ علیہ السلام. ملکہ کا رسپانس دیکھیے کتنا پازیٹیو آ رہا ہے، اور فرعون کا رسپانس آپ دیکھیے ساری زندگی ٹالتا رہا. فرق کس بات کا ہے؟ یہ فرق بس آپ نوٹ کر لیں. ملکہ کی نظر پیغام پہ تھی، کہتا کیا ہے، کہتے کیا ہیں، کہتی کیا ہیں. فرعون کی نظر پیغام لانے والے پر تھی، کون ہے، کہاں سے، کس گروپ سے، کس ادارے سے، کس جماعت سے. تو آج بھی ہدایت کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ جب لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ وہ ہے کہاں سے اور اس کا تعلق ہے. دوسرا فرق کیا تھا کہ فرعون کے دل میں تعصب تھا، انا تھی، تکبر تھا. اس ملکہ کے دل میں کفر تھا، تعصب نہیں تھا. آج یقین کے جی ایسے نان مسلم زیادہ ہیں جو صرف ہماری غفلت کی وجہ سے ابھی تک اسلام سے دور ہے، ان کے دل میں اسلام کے بارے میں کوئی دوسری چیز نہیں. اگلی بات دیکھیے کہ تحفے دے کر حضرت سلیمان کو آزمانا چاہا کہ اگر یہ کوئی لالچی شخص ہوگا تو میرے تحفے قبول کر لے گا. تو یاد رکھیے کہ جن کے دلوں میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے وہ مختلف اینگل سے آزماتے ہیں، لیکن کسی چیز کو بھی اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بناتے. خیر، اب کیا ہوا، جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے. اے سفیر، واپس اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. یعنی سلیمان علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب اترے. اگر تحفے قبول کر لیتے تو بظاہر ہم کہتے ہیں تحفہ قبول کر لیجئے، لیکن ساتھ ہی ملکہ کے دل میں آ جاتا کہ دنیا کے دوسرے بادشاہوں کی طرح یہ بھی ایک دنیا پرست اور لالچی انسان ہے. سلیمان علیہ السلام کا اس کو یہ کہنا کہ اب ہم تمہاری طرف آئیں گے یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام کا پیغام، اللہ کا پیغام، دین کا پیغام دنیا میں ہر خطے میں پہنچانا ایک مسلمان کا فرض ہے. سلیمان علیہ السلام کو اس کے ساتھ لڑنے نہیں جا رہے تھے، بلکہ پہلے خط بھیج کر وہ بات کرنا چاہیے. تھوڑا سا میدان ہموار ہوا، راستہ بنا، اب خود جا کر وہاں دعوت دیں گے. یہ ہے خوبصورت طریقہ. اور یہاں پورے لشکر کو لے جانے سے مراد یہ کہ ہم تمہیں اسلام کا پورا اظہار کریں گے. مثلا دیکھیے کہ آپ کہیں آئے اور ایک بندہ بیٹھا اور آپ کو دین کی بات سکھا رہا ہے، دوسری جگہ آپ آتے ہیں آپ کو 8-10 لوگ مختلف ذمہ داریاں ادا کرتے دکھتے ہیں، کس کون سا کام زیادہ خوبصورت لگتا ہے؟ جس میں ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، جس میں ایک پورا آرگنائز طریقے سے گرو ہوتا ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس عورت کو اسلام کی شان دکھانا چاہتے تھے، اور یہ کوائٹ پاسبل ہے اور یہ کرنا چاہیے. آج کے دور میں مسلمانوں کو اسلام کو اس طرح ڈسپلے کر کے پیش کرنا چاہیے کہ لوگ اسلام سے متاثر ہوں. اگر دوسرے لوگ اسکرین یوز کرتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں کرتے؟ दूसरे लोग माइक यूज करते हैं तो आप क्यों नहीं करते। जब हम बहुत खुटी भी सोच के से दीन को पेश करते हैं ना, तो बाज लोग तो ये भी कहते हैं माइक इस्तेमाल करना भी जायज नहीं है। बाज कहते हैं जैसे उस्ताद ऊपर थोड़ा बैठता है ये भी जायज नहीं है, ये तो इनको बड़ा बनने का शौक है। तो ये घुटन वाला जहन लेकर फिर कम अज कम वो लोग हमारी दावत पे नहीं आते जो दुनिया की बहुत खूबसूरत चीजों को पा चुके होते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, अब एक मिरेकल दिखाना चाहते थे जिससे अपनी नहीं इस्लाम की और अपने दीन की इज्जत करवाना चाहें। तो एक ऑफर हजरत सुलेमान ने अपने लोगों से पूछी और वो क्या थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अहले दरबार तुम में से कौन इसका तख्त मेरे पास लाता है कबल इसके कि वो लोग मती होकर मेरे पास हाजिर हों। जिन्हों में से कभी हैकल ने अर्ज किया मैं इसे हाजिर कर दूंगा कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठें। मैं इसकी ताकत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। ताकतवर हूँ कि इतना बड़ा तख्त ले आऊंगा और अमानतदार इतना हूँ कि उसके ऊपर लगे हुए हीरे जड़ मोती जो है वो उतारूंगा नहीं। जिस शख्स के पास किताब का एक इल्म था वो बोला मैं आपकी पलक झपकने से पहले इसे लाए देता हूँ। यानी इल्म की शान दिखाई गई है कि जिन तो अपनी ताकत और जिस्मानी कुव्वत की वजह से उस तख्त को लेकर आता, लेकिन इल्म वाले ने उसको अल्लाह तला के हुक्म से ऐसे ही वहां लाने की बात कर दी। जो ही कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा तो वो पुकार उठे ये है असल में मतलूबा किरदार जो हुक्मरानी का है। हाज़ा मिन फ़ज़्ली रब्बी। इतनी दौलत इतनी इज्जत बादशाह और जानवरों की बोलियां परिंदों की बोलियां और क्या कुछ कर रहे हैं लेकिन अंदर आजजी कितनी है। ये नहीं कहा हा 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 देखा हम कितने बड़े हुए, नहीं कहा जमीन फदली रब्बी और साथ ही कह दिली या ब्लुवानी आशकुर अम अकफुर। मिला क्यों है ये इल्म मुझे, ये दौलत क्यों मिली, ताकि वो आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या काफिर नेमत बनकर रहता हूँ। यहाँ आप भी अपने लिए रखें जो नेमत मिली आपको ये एक इम्तिहान का पर्चा। खूबसूरती है इम्तिहान है, हजरत यूसुफ की खूबसूरती फितना बन गई थी। इल्म है सबसे बड़ा इम्तिहान है, हजरत मूसा का इल्म के साथ इम्तिहान हुआ कि कौन बड़ा है तुम में से कौन नहीं है। तो हमेशा अपनी नेमतों को देखकर कहा करें अल्लाह इनका हक अदा करा ले, अल्लाह हमें आजजी दे, अल्लाह हमारे अंदर और नरमी ला दे, अल्लाह हम दूसरों को कोई बहुत ही छोटा ना समझने लगे। और दूसरी बात देखिए कि साथ ही कह दिया जो कोई शुक्र करता है इसका शुक्र इसके अपने ही लिए मुफीद है, वरना कोई नाशुक्री करे तो वो मेरा रब बेनियाज और अपनी जात में आप बुजुर्ग है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अनजान तरीके से इसका तख्त इसके सामने रख दो, वो देखें कि सही बात तक पहुंचती है कि नहीं। यानी देखना क्या चाह रहे थे कि मलका अकलमंद है कि नहीं, या उन लोगों में से जो राह रास्त नहीं पाते। मलका जब हाजिर हुई तो इससे कहा गया क्या तेरा तख्त ऐसा ही है, वो कहने लगी ये तो गोया वही है। ये है औरत की फरासत, किसी के घर में अपना बर्तन देखे कहती ये मेरा। भाई इकिया वालों ने कोई एक ही डब्बा तो नहीं बनाया नीले ढक्कन वाला, लेकिन अक्सर औरतें जाके दूसरों के बर्तनों को अपना करती हैं। तो औरत थी ना, फिर औरत ने पहचान लिया, चेंज भी कर दिया, तो उन्होंने चेंज करा दिया कि चलो देखते हैं। असल में हजरत सुलेमान उस औरत का आईक्यू लेवल देखना चाहते थे, हाउ इंटेलिजेंट शी इज। और ये दावा का बड़ा खूबसूरत नुकता है, किसी से राह चलते बस में ट्रेन में प्यार से बात करें पहले चेक करें इसका अपना प्रॉब्लम क्या है। अगर वो एथियस्ट है तो आप उनको और दलाइल देंगे, अगर वो कैथोलिक है तो और दलाइल होंगे, अगर वो जीव है तो कोई और होगा, हिंदू है तो कोई और होगा, अगर बिगड़ा हुआ कोई मुसलमान है तो बिल्कुल ही फर्क होगा। तो ये उसका आईक्यू लेवल चेक कर रहे हैं कि ये इंटेलिजेंट कितनी है। अच्छा चेंज भी कर दिया, इसी तरह कई औरतें कहती हैं वो सूट पहन के गए हमने काफी चेंज किया फिर भी दोस्तों ने पहचान लिया। अल्लाह अकबर, कितनी हमारी इंटेलिजेंसीज लगती हैं इन छोटी छोटी चीज़ों में। फिर अब देखिए जो तख्त ले जाया गया ये बिल्कुल ऐसे जैसे आज के दौर में फैक्स है ना, आप इधर एक पेपर डालते हैं और दूसरी जगह उसका पूरा प्रिंट आउट मिलता है। आज भी इस चीज़ पे रिसर्च हो रही है, इसको 3D कम्युनिकेशन कहते हैं, टेली ट्रांसपोर्टेशन इसका नाम है। आज के साइंटिस्ट इस पे हम कर रहे हैं कोशिश। मसलन ये मेरा फोन है, अब मैंने इसको नॉर्वे भेजना है, तो अब नॉर्वे भेजने के लिए दो तीन तरीके आजकल तो बहुत आम है, फेडेक्स है जो भी आपके पास डिफरेंट कंपनीज हैं। अब आने वाले दौर में क्या हुआ करेगा कि कुछ ऐसी रेज और ऐसी चीजें वो बना रहे हैं कि ये पलक झपकते में वहां पहुंचेगा। कुछ रेज है वो कहते हैं कि इस पर डालेंगे यहां ये जल जाएगा खत्म, लेकिन उधर इसका बिल्कुल ऐसा ही हिस्सा बन के पहुंच चुका होगा। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। याद रखिए ये कुरान उलूम का खजाना है, हमने अपनी यूथ का टैलेंट यूज़ नहीं किया, हमने उनको पता नहीं किन किन चीज़ों में डाल दिया। दुआ कीजिए कि हमारा टैलेंट इस्लाम की तबलीग में पहुंच जाए। वसद्दहा मा काना ताबुदु मिन दूनिल्लाह। इसको ईमान लाने से जिस चीज़ ने रोक रखा था वो इन माबूदों की इबादत थी जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूछती थी क्योंकि वो एक काफिर कौम से थी। हाईलाइट करें आपकी जुबान मेरी जुबान में क्या, अभी तक वो कुफर पे इसलिए थी कि शी बोर्न इन अ डिसबिलीविंग फैमिली, यानी काफिर घर में पैदा हुई थी, इसलिए आज तक उस पे थी, वरना उसका आईक्यू इतना मजबूत था कि अगर इसको सुलेमान जैसा कोई मुबल्लिग आज से 10 साल पहले मिल चुका होता तो ये तभी मान चुकी होती। आज सोचिए कितने हैं। क्या मैं और आप चाहते हैं कि हमारी छोटी सी लापरवाही से हमारे हमसाये में आग लग जाए, हमारे हमसाये से धुआं उठे, हम कहते हैं उठता रहे हमें क्या लगे ये तो काफिर है, फौरन जाएंगे कि नहीं, 911 को कॉल करेंगे, फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। तो प्यार महसूस करें इन लोगों का, मोहब्बत से हाथ थामें, जिस तक पैगाम दे सकते हैं पहले रो के मोहब्बत से खिलाएं पिलाएं, आजजी के साथ उनके साथ बात करें, पहले उनकी सुने उनके क्रीड सुने और फिर उनको लेकर चलें, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर वो माने ना माने आपका अजर जाया नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। खैर, अब हजरत सुलेमान उसको दिखाना चाहते थे कि देखो अल्लाह इस्लाम के साथ भी कितना गलबा देता है, तो यही बात कर दी गई, कील अदखुलिल सरह, इससे कहा गया महल में दाखिल हो। इसने जो देखा तो समझी के पानी का हौज है और उतरने के लिए इसने अपने पांचे उठा लिए, यानी उस दौर की तरक्की देखिए कि शीशे का फर्श था नीचे पानी बह रहा है। आज लोगों ने ऐसी कोशिशें करनी शुरू की, आज से कितने सौ साल पहले अल्लाह ने दीन वालों को ये सब कुछ दिया। ये असल में सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस बात की दलील है कि दीन और दुनिया एक जगह जमा हो सकती है। अब हजरत सुलेमान ने महल बनाया और ये किया वो किया, ये कुछ कर रहे हैं, क्या उनका तकवा नहीं है? आगे आप पढ़ेंगे सुलेमान की एक खूबी है जो किसी और इंसान को दुनिया में हासिल नहीं है। तो याद रखिए कि ये जो एक हमारा माइंड सेट बन चुका है ना कि दीन के साथ गुर्बत, दीन के साथ खराबी, दीन के साथ बूढ़ापन, ये दीन नहीं है। दीन के साथ आप नासा में बैठ के काम करें, कितना अच्छा लेवल हो। आप सोचें कि एक शख्स है और वो अपनी लैब में काम कर रहा है और लेबॉरेटरी में कंप्यूटर्स खुले में ये वो हो रहा है, वो क्या हैव टू गो, क्यों, मैं फलां मस्जिद का इमाम हूं, मैंने वहां जाके जोहर की नमाज पढ़ानी है। क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा कि एक तरफ हमारे बच्चे साइंस को सर्व करें और दूसरी तरफ मस्जिदों की टेक केयर करें। ये वक्त आएगा फिर मुसलमानों ने गालिब होना है, वरना नारे लगाते और जज्बाती बातें करते और रोते रुलाते और फाड़ने वाली तबलीगों से दीन नहीं फैलेगा। अपने ही चंद लोगों में थोड़ा बहुत है जान बर्पा कर दें तो बहुत है। तो आज के दौर में समझदारी के साथ तबलीग की जरूरत है, अकलमंद पढ़े लिखे तरीके से, लोगों की इज्जत करते हुए, लोगों को ताने ना दें, घबराए ना। और आप देखिए सिर्फ एक इंटरेक्शन हुआ, एक आधी कॉन्वर्सेशन हुई, मलका मुसलमान हो गई। क्या आज दुनिया के सोचिए तो सही, अब मलका मुसलमान हुई तो क्या वो मुल्क मुसलमान नहीं हुआ होगा? नबी सल्लम के दौर में ऐसा हो चुका, एक हुक्मरान मुसलमान होता था पूरा मुल्क होता था। आज इमेजिन तो कीजिए किसी मुल्क का मुसलमान इस्लाम के असूलों से मुतासिर होकर अगर मुसलमान होता है, कितना आसान हो जाता है उस मुल्क के अंदर दीन का आना। सिर्फ बात यह कि हमें खुद यकीन तो हो, और अगर आप इस्लाम के वो कॉन्ट्राडिक्टरी इश्यूज को पीछे कर दें जो आज वेस्ट में दो चार फैलाए हुए हैं, उस पर नहीं बात करनी, दीन की तबलीग, ला इलाहा इल्लल्लाह, कम टू गॉड, कम टू गॉड, तुम्हारा गॉड मेरा अल्लाह, फलां का ईश्वर, फलां का भगवान, फलां का वो, आओ तुम्हें बताऊं वो चाहता क्या है। तो जब लोगों को सिर्फ अल्लाह से जोड़ेंगे ना, आधे से ज्यादा काम इससे आसान होगा। हम शुरू करते हैं नेल पॉलिश, नेल पॉलिश लगा के नमाज होती है कि नहीं, वो सुअर का गोश्त खा सकते कि नहीं, पर्दा जायज है कि नहीं, चार शादी, आपको क्या लगे? आप किसी एक स्कूल में दाखिल ही नहीं हुए तो आपको क्या लगे कि उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है? तो लोगों को अल्लाह से जोड़ दें, बाकी काम अल्लाह खुद उनसे करा लेगा इंशाअल्लाह ताला। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये शीशे का चिकना फर्श है, इस पर वो पुकार उठी है, मेरे रब आज तक मैं अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म करती रही। कितनी जल्दी इस औरत को एहसास हुआ अपनी गलतियों का, और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत कबूल कर ली। तो अल्लाह ताला ऐसे खूबसूरत तरीके से दावत देने वाला बनाए। हमने इन सूरतों से लिया तो क्या लिया, लोक दास्तानें बना दी, इनकी शादी ना करवाएं तो हमारी दास्तान ही नहीं पूरी होती, उधर यूसुफ सुलेहा की शादी, इधर सुलेमान और इस औरत की शादी। देखिए घटिया सोच है, ये बात रोने वाली है कि जब हमारे जहनों में दीन गालिब नहीं रहता, लोक दास्तानें और कहानियां और फिल्में और ड्रामे हैं, तो फिर हम हर कुरान की स्टोरी को भी कोई एंड देना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने उस औरत को इस्लाम दिलवा दिया, इससे बड़ी और क्या दौलत हो सकती है?